समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदानों की गतिविधियों की भी हम आपको देंगे जानकारी, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ है शगुन चोपड़ा।
नमस्कार विशाल एंड टू आर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड विशाल शर्मा टुडे। वेल यस, विशाल वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल दैट इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। वेल एंड टुडे लेट मी स्टार्ट विद बाय एक्सटेंडिंग हार्टफेल्ट विशेस टू फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ टू सक्सेसफुली ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ। And today it's International Day of Families. We'll discuss more about it in our Dateline India segment. So let's start with the headlines.
जी शगुन, प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया।
बीजेपी एमएलए रथिंद्र बसु इलेक्टेड एज न्यू स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली।
और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।
So this is our segment Dateline India and today, as we were telling you in the beginning, today it's International Day of Families. So well, loneliness, financial stress and emotional distance, they grow across modern homes. Nowadays it's pretty common. The International Day of Families 2026, therefore, it highlights why strong family bonds, they remain essential for child well-being, mental health and social stability in an increasingly unequal and uncertain world.
जी शगुन, और परिवार का जो महत्व हमारे जीवन में है उससे तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता। परिवार केवल खून के रिश्तों से बंधा हुआ एक समूह नहीं होता, बल्कि ये जीवन मूल्यों का पहला विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है जहां हम जीवन की वैल्यूज के बारे में सीखते हैं। और परिवार के भीतर ही व्यक्ति सबसे पहले प्रेम, त्याग, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सहअस्तित्व सीखता है। सहअस्तित्व की जो भावना आती है, को एग्जिस्टेंस की, सबके साथ रहने की जो भावना होती है, वो वहीं सीखता है परिवार में। और यदि परिवार हमारे स्वस्थ हैं तो समाज भी स्वस्थ होता है, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज शगुन देखा जाए तो आवश्यकता केवल परिवारों को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें मूल्यों पर आधारित और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने की है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, बुनियादी जरूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है और युवाओं के सामने रोजगार को लेकर की भी कई चुनौतियां होती हैं, तो परिवार और खासतौर पर संयुक्त परिवार की आवश्यकता बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। संयुक्त परिवार केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं होते, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं, और इसमें संसाधन जो है साझा किए जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और किसी भी संकट का सामना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। और जो बड़े शहरों में, महानगरों में जो है अकेलापन, अकेलेपन की जो समस्या है, उससे जो अवसाद की समस्याएं पैदा होती हैं, वो संयुक्त परिवारों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप याद करिए पुराना समय जब परिवार संयुक्त रहा करते थे, सारे जो प्रत्येक व्यक्ति के जो कष्ट होते थे, समस्याएं होती थी, सब उसको मिल बांट करके पता भी नहीं चलता था किस तरीके से जीवन निकल जाता
था। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दे यूज्ड टू सॉल्व इट बाय टॉकिंग एक्चुअली। in conversations. So let's dive into the history of the day as well. Now we have established the whole theme here. During the 1980s, actually, the United Nations began focusing their attention on issues related to families. So this started in 1980s. Then in 1993, the General Assembly decided in the resolution that 15th of May every year should be observed as the International Day of Families. So this happened in the year 1993. So this day provides an opportunity to promote awareness of issues which is related to families and also to increase the knowledge of social, economic and demographic processes affecting families. Families must become the first place where a child learns tolerance and compassion, right? Family members, they teach them. It should be a space where children are taught that life is not a competition. You were also talking about coexistence. A place where elders are not treated as burdens, but as invaluable treasures of experience, which they share with us. A place where women receive dignity, the children, they receive values, and youth receive trust and confidence. Much of the growing, Vishal, much of the growing violence in today's world, it stems from the weakening of dialogue and sensitivity within the families. Children are speaking to mobile phones, but not to their parents. Yeah. Families may be living together physically, yet emotionally they are falling apart. Climate change, wars, economic instability, so many issues, they have made the entire world insecure. Whether it is the Russia-Ukraine war, the conflicts in West Asia, the greatest impact of these crises falls upon families. So millions are displaced. Children, they become orphans, and women face insecurity and exploitation.
जी, और इस साल का जो परिवार विश्व परिवार दिवस का जो आयोजन का विषय है वो है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं। ये असमानताओं को कम करने और बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायता के लिए एकीकृत और परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक ध्यान देने का आह्वान करता है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति में परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और फिर भी कई परिवारों को आय की अनिश्चितता, देखभाल संबंधी सीमित सहायता और जरूरी सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सहायता न मिलने पर छोटे बच्चे वाले परिवारों में गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और समग्र कल्याण पर बहुत लंबे समय तक असर देखने को मिलता है। आय में जो स्थिरता होती है और देखभाल संबंधी सीमित सहायता और बच्चों के विकास में जो बाधा आती है, वो इन सभी समस्याओं के साथ साथ जो है दिव्यांगता पर आधारित असमानताएं भी इसमें जुड़ जाती हैं।
Well, the relationship between family stability and economic inequality, it is characterized by a bi-directional cycle where financial stress undermines domestic security, while stable families, if we talk about stable families, they serve as a critical buffer against economic hardship. So on the International Day of Families 2026, experts, they have highlighted that growing global inequality and inflation, they are directly contributing to emotional instability, emotional exhaustion actually, within the modern homes. And amid these global crises, the family, they play an important part. Families remain the one institution that gives broken human beings the courage to live again with happiness.
जो आपने इन्फ्लेशन की बात करी और ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात करी, तो इस ये जो आर्थिक दबाव है ना, इसके कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब देखने को मिल रही हैं। और इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो भारतीय माता पिताओं में अवसाद का खतरा 12% तक बढ़ जाता है जब उनके वयस्क बच्चे बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं। और इसके अलावा बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने भी एक सैंडविच जनरेशन ले ऑफ की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जहां करियर के मध्य में नौकरी छूटने से भूमिकाओं में उलटफेर हो जाता है और परिवार के भरण पोषण का जो बोझ है वो छोटे बच्चों पर आ जाता है।
वेल ट्रू। सो इफ वी फोकस ऑन आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, इट इज ऑल देयर हैज ऑलवेज बीन फैमिली सिस्टम, इट हैज बीन बेस्ड ऑन फैमिली सिस्टम। इन इंडिया द फैमिली इज नॉट, इट हैज नेवर बीन मियरली अ सोशल अरेंजमेंट बट अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। And the epics, let me highlight the epics, Ramayana, Mahabharata, they are not merely tales of war, they are profound narratives of family values, relationships, duties. And let me highlight how the Indian philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family, It offers a vision that can eliminate war, violence, terrorism and hatred if truly it is practiced. And unfortunately, well, the consumerist culture has now entered families as well. Relationships are increasingly measured on the scale of profit and loss. Too bad. And tolerance is decreasing. While expectations, they are rising. So relationships breaking over trivial issues, they indicate that while we have increased comforts, we have lost sensitivity. Each person is going through some kind of struggle in between. So the true strength of a family lies not in wealth, but in trust. So where trust survives, even scarcity turns into celebration.
आपने टॉलरेंस की बात की जो लगातार कम होती जा रही है और ये हमारी सहन शक्ति जो कम होती जा रही है ना शगुन, उसी के चलते हम अब किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें अपने आराम चाहिए, अपनी आदतें, हम अपना जो भी हम देखना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। कोई भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उपस्थित हो जाता है, वहां पर खड़ा हो जाता है आकर के, तो लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये तो दूसरे की उपस्थिति जो है, परिवार के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति भी अब जो है सहन नहीं होती है लोगों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। जो इन सब चीजों की जो आपने बात की, इन दबावों के बावजूद परिवार ही है जो बच्चों की भलाई और भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक 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 सहारा बनता है, एक बड़ा सहारा बनता है और उन्हें सुरक्षा भी देता है। कई घरों में आप अगर हम अपने दादियों की या नानियों की बात याद करें तो महिलाएं जो है पहले के समय में सावधानी से बजट बनाती थी और छोटी छोटी बचत करके, जिसका किसी को पता भी नहीं होता था परिवार में, और अचानक आने वाली जो बड़ी आर्थिक परेशानियां जब आती थी उस समय वो संकट मोचन का काम करती थी उनकी वो बचत, और परिवार को महिलाएं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी।
Well, how great is that? And you know, we are also talking from around 10 minutes and it's such great fun to have these kind of conversations. And I think we should urge our listeners also to have conversations like this. Whatever happens in your daily life, we should encourage them also, you know, to talk to their family members. It's so cool and it's wonderful. And as these global disparities, they widen, this year's observance will spotlight gaps in income, in education, healthcare, digital access and essential services that shape children's life chances. It will emphasize the need for integrated social protection systems. This includes child benefits, parental leave, affordable childcare and early education, and this will thereby strengthen family resilience, reduce poverty and promote equal opportunities.
समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं कि आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं।
सो विशाल, विल फर्स्ट हेड टू गोवा। सो द गोवा गवर्नमेंट हैज रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू सपोर्टिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द स्वयंपूर्ण गोवा मिशन एंड स्टार्टअप सपोर्ट स्कीम्स। Chief Minister Pramod Sawant said women in Goa are increasingly stepping into entrepreneurship and self-employment. Let's find out more details from our correspondent.
Women in Goa are taking the lead in starting businesses. Chief Minister Pramod Sawant said that one third of the beneficiaries under these schemes are women entrepreneurs. The Chief Minister said there is a common misconception that startups are only meant for IT sector. He clarified that women can also benefit from the startup scheme and successfully start businesses in many other fields. He was speaking during the expanded launch of the Women Entrepreneurship Program held at Lok Bhavan in collaboration with Niti Aayog and Rural Development Department. Dr. Sawant said the Goa government is providing several incentives to help women become financially independent and support them in marketing the products they create. He urged women across the state to make use of these schemes to expand and strengthen their enterprises. Under the Women Startup Initiatives, women entrepreneurs can avail loans up to 10 lakh rupees to start businesses. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
और अब बात करेंगे विदर्भ की। विदर्भ में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत पूर्ति संचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के रजत जयंती समारोह के अवसर पर नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और इस विषय में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को जल संपन्न बनाने पर बड़े पैमाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि फार्म तालाबों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग अकोला, वाशिम और बुलडाणा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया गया है, जिससे पश्चिम विदर्भ में भू जल स्तर बढ़ा है।
हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट लगती है तो नदी नालों का खुलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहाँ किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहाँ तालाब बनाना, इसके दो बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3500-4000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी है और वहाँ अच्छी क्रांति। दूसरा एक बुलडाणा पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की, ये बुलडाणा से अजंता तक रोड था, हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खुलीकरण किया और ये मिट्टी पूरी रोड में, और इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई।
ऐसे कई प्रयासों पर नितिन गडकरी ने चर्चा की। देश भर से प्रमुख जल विशेषज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां इन आयोजनों में भाग लेने वाली है। सम्मेलन का विशेष आकर्षण पानी फाउंडेशन के संस्थापक और प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान, नाम फाउंडेशन के अध्यक्ष नाना पाटेकर और सचिव मकरंद अनासपुरे की उपस्थिति होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
So this next report, even I am very excited to know about it, Niang Taser 2026. This is a two-day festival celebrating the mass emergence of the World Cup cicada. This is also known as World Cup insect. This was held on May 8th and 9th in Meghalaya's Riboi district. So this festival is actually a celebration of the Niang Taser, popularly called, I told you, World Cup insect, that appears in the same year. When the FIFA World Cup is held, the locals refer to it as the Niang World Cup. Let's find out more details in this report.
The residents of Saiden village in Meghalaya's Riboi district recently celebrated the Niang Taser festival, one that is quite unique because it is centered around a mysterious insect that appears only once every 4 years. Locally known as the World Cup insect, the appearance of Niang Taser is often linked with the FIFA World Cup season. The two-day festival was organized by the Riboi District Tourism and Environmental Development Forum in collaboration with the headmen of Saiden village. Meghalaya Community and Rural Development Minister Shri Sosthenes Sothun inaugurated the festival and said that the unique festival highlights the richness of Riboi. The event featured traditional sports, cultural performances, folk songs from different localities, traditional dance competitions, fishing competitions, a fashion show and football-themed activities. The insect has become a cultural symbol in several villages of Riboi district. People associate its arrival with celebration, football fever and traditional gatherings. Families gather through the night to collect the insects, which are also considered a local delicacy. Organizers and village elders believe that the festival is helping showcase Meghalaya's rich biodiversity and indigenous culture to visitors from outside the state. The Niang Taser festival blends folklore and community celebration, and it continues to remain one of Meghalaya's most rare cultural traditions. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
मणिपुर को उसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक समृद्धि के लिए जाना जाता है और रिंग फेस्टिवल 2026 के लिए की मेजबानी के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है मणिपुर राज्य। ये एक अनूठा मंच है जो वहां की मूल कला, संस्कृति और पहचान का उत्सव मनाता है। ये महोत्सव कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों को एक साथ लाता है जो इस क्षेत्र की विविध परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देता है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे इम्फाल संवाददाता।
The 5-day Ring 2026 festival, scheduled to take place from 21st to 25th May 2026, with preparations already in progress for its grand event at Mapal Kangjibung and Kumbalam Park in Imphal. Ring 2026 aims to elevate the indigenous games inherited from the forefathers of the land to the international stage. More than just a sporting event, Ring represents a broader culture and movement dedicated to preserving identity, strengthening community ties, and inspiring inspiring the youth through engagement with tradition and heritage. The festival will showcase a wide range of indigenous games from different communities, including Thang Ta, Mukna, Yubi Lapi, Mukna Kangjai, Sagol Kangjai, Arambai Hunba, Kang, Thauri Chingbi, Naga Wrestling, and Porcupine Foraging Games of the Tarau tribe. A call has also been made to scholars, youth organizations, and athletes involved in traditional games to unite under one platform and motivate the younger generation to revive and uphold the rich culture and heritage of Manipur. Ring 2026 promises to be more than just a festival. It is a celebration of identity, creativity, and cultural unity. As Manipur prepared to host this five-day event, it reflects a strong commitment to preserving and promoting indigenous traditions while embracing global cultural dialogue. Jeje Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और अब संक्षिप्त जानकारी खेल के मैदान से। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
Now in Thailand Open in badminton, India's top men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Now in some business news, benchmark domestic equity indices reversed earlier gains and ended around 0.2% down today. The Sensex fell 161 points to close at 75,238, while the Nifty dropped 46 points to settle at 23,644. The broader market on the National Stock Exchange also ended lower.
कार्यक्रम के इस हिस्से में बात करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन्हें याद भी करेंगे और साथ ही साथ उन व्यक्तित्वों के भी बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था।
During the First War of Independence, on the 15th of May 1857, supreme command of the army was given to Mirza Mughal. Mirza Mughal was son of Bahadur Shah Zafar. He took a leading part in the First War of Independence of 1857. On the 15th of May 1857, a darbar was held in Red Fort and new officers of the Hindustani army were appointed by the emperor. The supreme command of this army was given to Mirza Mughal. He was titled as Commander-in-Chief Bahadur and his honorific title was Sahib-e-Alam.
In his capacity as Commander-in-Chief, Mirza Mughal worked as a liaison officer between the civil and military departments and formed a link with warriors on the one hand and the merchants and local chiefs on the other. He continued to play an important role in military administration. After the reoccupation of Delhi by the British, Mirza Mughal was captured on the 22nd of September 1857. The British took him near Khuni Darwaza and asked him to take off his clothes. He was shot dead and his body was driven to the Kotwali and laid down outside the building before he was buried. We salute this great nationalist.
We also remember martyr Harpal Singh. He was in the English East India Company Army but left it during the First War of Independence of 1857 and joined hands with rebel forces with a pledge to overthrow the oppressive foreign rule. He fought the British at several places and was finally caught during a confrontation. He was charged with mutiny against the British Empire and sentenced to 7 years jail. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858, where he died due to physical torture in captivity on the 15th of May 1858. We salute.
We also remember martyr Sukhdev Thapar. He was born on the 15th of May 1907 in Ludhiana. Sukhdev Thapar had witnessed the brutal atrocities that the Imperial British Raj had inflicted on India, which led him to join the revolutionary freedom fighters.
आज पुण्यतिथि है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की। कुछ लोग सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान सैन्य अधिकारी थे फील्ड मार्शल कुंडडेरा मडप्पा करियप्पा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त करने वाले करियप्पा ने भारतीय सेना को नई पहचान और मजबूत दिशा दी। इस पद पर वे 1953 तक रहे। उनका मानना था कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और देश के प्रति समर्पण होता है। सैनिकों के बीच वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे बल्कि प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक भी माने जाते थे। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा और योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
Today, listeners, we are also remembering Emily Elizabeth Dickinson, the poet. The Poetry Foundation describes her as having created in her writing a distinctively elliptical language for expressing what was possible but not yet realized. Although she was a prolific writer, only 10 of her nearly 1,800 poems were published during her lifetime. Today, her poems are widely regarded as groundbreaking with their use of lean descriptions and slant or off-rhythm.
आज ही पुण्यतिथि है कालिंदी चरण पाणिग्रही की। शब्दों को भावनाओं की ताकत देने वाले महान साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही को उड़िया साहित्य का प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास हो, नाटक साहित्य की लगभग हर विधा में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी रचनाओं में समाज, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। इनकी प्रसिद्ध कृति की बात करें तो माटीरा मणिषा आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इन्हें उड़िया साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण पाणिग्रही को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द कंट्री सिंगर सॉन्ग राइटर एक्ट्रेस एंड ऑथर वैलोरी जून कार्टर कैश। अ फाइव टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर शी वॉज अ मेंबर ऑफ द कार्टर फैमिली and also well she performed under the name June Carter in the beginning, then she continued to use that name professionally, including on songwriting credits. I have a beautiful song in her voice. Let's listen in.
Now I've got arms
and I've got arms, let's get together and use those arms. Let's go, time's wasting.
I got lips
and I got lips,
let's get together and
आज के दिन जन्म हुआ था महेंद्रनाथ मुल्ला का। कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला। और 1926 में आज के दिन इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आईएनएस खोखरी के कप्तान थे ये। और युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, तब इन्होंने अपने साथियों की जान बचाने को सबसे पहले महत्व दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए। उनका ये साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय नौसेना के इतिहास में अद्भुत उदाहरण माना जाता है। देश के प्रति उनकी वीरता और सेवा को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
Well, today it's also Madhuri Dixit Nene's birthday. So she has appeared in over 70 Hindi films, attaining nationwide stardom that influenced Indian popular culture.
जी, आज बॉलीवुड की धक धक गर्ल का जन्मदिन है। और माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अभूत से अपने फिल्मी जीवन की करियर की शुरुआत की थी। और अभिनेत्री के रूप में देखा जाए, जिस फिल्म से इनको पहचान मिली वो थी फिल्म तेजाब।
एग्जैक्टली,
और तेजाब फिल्म से ही इनको पहली सफलता मिली और इसके बाद ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। और माधुरी दीक्षित ने अगर फिल्मों बात करें तो बहुत लंबी सूची है, फिल्मों की लिस्ट है। दयावान, रामलखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन जैसी सफल फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। और इनकी मुस्कान और चेहरे के भाव और इनका जो नृत्य जो था वो दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता था।
सो यू टॉक्ड अबाउट हम आपके हैं कौन, वी ऑल्सो हैव अ डायलॉग फ्रॉम द मूवी, लेट्स लिसन इन।
जी जरूर।
समझ गई।
क्या?
खड़े होइए।
जी
खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं।
जी
जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने।
नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं।
सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन।
जी, और हर किरदार में माधुरी ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी है।
So her accolades, they also include 6 Filmfare Awards and in 2008, well, she was awarded with Padma Shri, right?
जी, तो उनकी फिल्म का एक गीत जरूर सुना जाए।
जी
और श्रोताओं, अब समय हो रहा है, आपसे हमें अनुमति लेनी होगी यहीं पर, तो इजाजत दीजिए विशाल और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। और आप इस कार्यक्रम को अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
सो विद दैट थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।